पुरानी दिल्ली। लाल किले के सामने की सड़क पर नेकर पहनकर एक छोटा सा बच्चा अस्पताल से बाहर निकल रहा है। उसकी कांख में सुंदर लाल कलगी वाला एक काला मुर्गा है। मुर्गे के सिर पर पट्टियां बंधी हैं।
क्या कर रहा है इसके साथ?
मैं हॉस्पिटल ले गया था।
इसको हॉस्पिटल लिया?
हाँ, यहाँ टाके लगे, कुछ डॉगी ने काट लिया। उन्होंने टाके लगाए।
ये अस्पताल दिल्ली के बीमार इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पंछियों का इलाज होता है। अंदर 400 पिंजड़े हैं, जिनको ठंडा रखने के लिए पंखे चलते रहते हैं। बीमार पंछियों को दवाइयाँ और तरल प्रोटीन भी दिया जाता है। चांदनी चौक पक्षी चिकित्सालय एक अजूबा सा लगता है, लेकिन तभी तक जब तक आप ये नहीं जानते कि ये अस्पताल दिगंबर जैन मंदिर के परिसर में है। भारत के महान धर्मों में से एक जैन धर्म के तकरीबन 50 लाख अनुयायियों की आस्था का एक बुनियादी सिद्धांत है पशु पक्षियों की देखभाल। जैन धर्म का ये मूल विश्वास है कि जिस धरा पर हम रहते हैं और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सब में जीवन है। संपूर्ण जगत जीवमय है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम अहिंसा के माध्यम से जीवात्माओं से भरे पूरे इस ब्रह्मांड की रक्षा करें। डॉक्टर सुनील ने इस अस्पताल में कई सालों तक काम किया है।
इस समय हमारे अस्पताल में करीब 4,500 पक्षी हैं। यह अस्पताल दुनिया में अपनी तरह का अनूठा अस्पताल है, क्योंकि यह सिर्फ दान से चलता है और 99% दान जैन समुदाय से मिलता है।
सच पूछिए तो हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म का भी कोई संस्थापक नहीं है। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। तीर्थंकर यानी वो आत्माएं जो मानवीय पीड़ा और हिंसा से भरे इस सांसारिक जीवन को पार कर आध्यात्मिक मुक्ति के क्षेत्र में पहुंच गई हों। सभी जैनियों के लिए 24वें तीर्थंकर महावीर जैन का खास महत्व है। महावीर इन आध्यात्मिक तपस्वियों में से अंतिम तीर्थंकर थे, लेकिन जहां औरों की ऐतिहासिकता अनिश्चित है, वहीं महावीर जैन के बारे में पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया। अहिंसा के इस उपदेशक का जन्म क्षत्रिय जाति में हुआ। वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। दिलचस्प बात यह है कि महावीर भी उसी मगध क्षेत्र यानी कि आज के बिहार के थे जहाँ के गौतम बुद्ध थे। जरूर इसमें नियति का कोई खेल रहा होगा।
ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिरसिद्धानम।
गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित उस युग के वैदिक विश्वासों के आधिपत्य के खिलाफ उठे आंदोलनों के सबसे करिश्माई प्रवक्ता थे। महावीर के अनुयायियों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत जैसे कुछ वैदिक विश्वासों को तो अपनाया, लेकिन गौतम बुद्ध की तरह जाति बंधनों, देवताओं की सर्वोच्चता में विश्वास और पशु बलि की प्रथाओं से किनारा कर लिया। महावीर के अनुयायियों के लिए मुक्ति का मार्ग त्याग और बलिदान ही है, लेकिन इसमें जीवात्माओं की बलि शामिल नहीं। पॉल ड्यूंडास एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में जैन धर्म का अध्ययन कर रहे हैं।
All forms of existence, according to Jainism, are embodied souls.
जैन धर्म के अनुसार जिस भी चीज का अस्तित्व है उसमें आत्मा है, उसे जीवा कहा गया है, जिसका अर्थ है जीवनी शक्ति। यह विश्व जीवों से भरा है, ऐसे जीवों से भी जो प्राय दिखाई नहीं देते। यहाँ सवाल केवल मनुष्यों और पशुओं का ही नहीं है, बल्कि इसमें पौधे, कीट पतंगे और यहाँ तक कि पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि में मौजूद जीवात्माएं भी शामिल हैं। और इस जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण यह है कि हम अपने आचार व्यवहार को इस तरह नियंत्रित और अनुशासित करें कि हमसे जानते बूझते या अनजाने में जीवात्माओं को कम से कम क्षति पहुंचे।
कुछ बौद्ध ग्रंथों में महावीर का उल्लेख है, लेकिन आज हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका आधार दो जैन ग्रंथ हैं। प्रचारात्मक कल्पसूत्र महावीर के सदियों बाद लिखा गया और इससे पूर्व लिखे गए आचारांग सूत्र हैं। इस ग्रंथ में महावीर को भ्रमणरत, नग्न, एकाकी साधु के रूप में दर्शाया गया है।
We're in the boardroom of the British Library.
लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में कई जैन पांडुलिपियां रखी हैं, जहां जैन अनुयायी डॉक्टर मेहुल संगराज का इस संग्रह को व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं।
कई विद्वानों का मानना है कि इस आचारंग सूत्र ग्रंथ के कई शब्द स्वयं महावीर द्वारा कहे गए शब्द हैं। इसके बारे में दूसरी रोचक बात यह है कि यह महावीर की पहली जीवनी है, जो बाद में लिखी गई उनकी जीवनियों से बहुत अलग है। ग्रंथ के अंत में एक जीवनी है जिसमें महावीर स्वयं अपनी कठिनाइयों की बात करते हैं कि जो लोग उन्हें और उनकी शिक्षाओं को समझ नहीं पाए, उन्होंने उन पर पत्थर फेंके, छड़ियों से पीटा, जैसे वे कहना चाहते हों कि वे जिस तरह के जीवन का उपदेश दे रहे हैं वह आसान नहीं है, भव्य भी नहीं, लेकिन अंतिम परिणाम सुखद है।
कहा जाता है कि महावीर ने 30 वर्ष की आयु में भ्रमण करना प्रारंभ किया और वो 42 वर्ष तक यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे। गौतम बुद्ध की तरह महावीर ने किसी मध्यम मार्ग का उपदेश नहीं दिया। महावीर ने अपने अनुयायियों को असत्य और मैथुन त्यागने, लालच और सांसारिक वस्तुओं का मोह छोड़ने व हर प्रकार की हत्याएं व हिंसा बंद करने का संदेश दिया। ज्ञान की खोज में गृह त्याग कर महावीर ने अपनी यात्रा की शुरुआत भी एक भयानक पीड़ाजनक कृत्य से की। कल्प सूत्र में अशोक वृक्ष के नीचे घटित उस क्षण का वर्णन है।
वहां उन्होंने अपने अलंकार, मालाएं और सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया। आकाश में चंद्रमा और ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोजन की बेला में उन्होंने 2.5 दिन के निर्जल उपवास के बाद दिव्य वस्त्र धारण किए। वे बिल्कुल एकाकी थे, कोई उनके साथ नहीं था। अपने केश लुंचित कर और अपना घर बार छोड़कर वे सन्यासी हो गए।
उनके शिष्य बौद्धों की तरह अपना सिर मुंडवा कर ही संतुष्ट नहीं होते, बल्कि वो अपने मुट्ठियों से केश लुंचन करते हैं। महावीर और जैन परंपरा की शिक्षाएं 20वीं सदी के भारत में तब राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गईं, जब महात्मा गांधी ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ब्रिटिश राज को हटाने के लिए अहिंसा का प्रयोग किया। और गांधी जी जैन धर्म की सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान की भावना का बेहद आदर करते थे। अहिंसा का उनका दर्शन लियो टॉलस्टॉय सहित कई स्रोतों से प्रभावित था, लेकिन महावीर उन्हें अहिंसा के सिपाही लगते थे। कठिनाइयों से जूझता एक कर्मठ वीर, ड्यूंडास कहते हैं।
महावीरस नेम लिटरली मींस द ग्रेट हीरो।
महावीर के नाम का शाब्दिक अर्थ है महान वीर या नायक। मेरा मानना है कि आज की दुनिया में हम में से कई तब को नकारात्मक मानते हैं, उपवास वगैरह रखने को शारीरिक कष्ट और पीड़ा के ऐसे रूप मानते हैं जो धार्मिक लोग हमेशा से खुद को देते रहे हैं, लेकिन भारत में इसे नकारात्मक नहीं माना जाता, बल्कि बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बहुत साहस का कार्य समझा जाता है।
महावीर के पवित्र उपदेश संपूर्ण भारत में फैले, विशेषकर पश्चिमी भारत के गुजरात और राजस्थान में तथा दक्षिण भारत में कईयों ने जैन धर्म अपनाया। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आपको सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ मिलेगा, एक विशालकाय प्रतिमा जो एक पर्वत की चोटी को काट कर गढ़ी गई है, बाहुबली चोटी।
It's a long barefoot climb, up steps.
यहां तक पहुंचने के लिए मैंने नंगे पैर सीढ़ियों से लंबी चढ़ाई चढ़ी है। मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। ज्यादातर जैन मंदिर मजबूत चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और बेहद दूर दराज के इलाकों में हैं। यहाँ से झांकने पर दिखाई पड़ता है उत्तरी कर्नाटक का अद्भुत दृश्य। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली या गोम्मट पहले तीर्थंकर के पुत्र थे। 17 मीटर ऊंची और 8 मीटर चौड़ी ये प्रतिमा एक चट्टान से बनी विश्व की सबसे विशाल मानव प्रतिमा है।
It's a muscular figure of great stillness. In fact, so still.
बाहुबली प्रतिमा, ये बलिष्ठ प्रतिमा स्थित प्रज्ञ गोम्मट की है। माना जाता है कि गोम्मट या बाहुबली इतने निश्चल भाव से समाधि में खड़े थे कि आसपास की लताएं उन पर चढ़ती रहीं, उनके अंगों से लिपटकर बढ़ती रहीं। मैं उनके नग्न शरीर पर उन लताओं के टेढ़े मेढ़े आकार को भी देख पा रहा
हूँ।
जैन प्रतिमाओं का सहज रूप तप की अंतिम अवस्था को दर्शाता है। कठोर जैन निरामिष भोजन में न केवल मांस व अंडों का सेवन निषेध है, बल्कि कंद मूल भी वर्जित है, शायद इसलिए कि उन्हें उखाड़ने से जमीन के अंदर व आसपास के पौधों और छोटे जीव जंतुओं को कष्ट पहुंच सकता है। दिल्ली के दिगंबर जैन मंदिर में महिलाएं पूजा कर रही हैं। जैन समुदाय में इस बात पर मतभेद है कि महिलाएं ज्ञान व मुक्ति के मार्ग पर चल सकती हैं या नहीं। एक जैन ग्रंथ के अनुसार महावीर स्त्रियों को विश्व का सबसे बड़ा प्रलोभन मानते थे और कठोरतम जैन परंपराओं के मुताबिक स्त्रियां सन्यासी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके शरीर में अंडाणुओं का निर्माण होता है जो कि मासिक धर्म के श्राव के वक्त मारे जाते हैं। पॉल ड्यूंडास कहते हैं,
जैन स्क्रिप्चुरल ट्रेडिशन इज फुल ऑफ रेफरेंसेस टू।
इस समुदाय को दिगंबर कहते हैं, यानी दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। दिगंबर नग्न रहते हैं। दिगंबर जैनियों का दावा है कि केवल नग्न साधु ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और चूंकि स्त्रियों को नग्न रहने की मनाही है, इसीलिए वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती।
महावीर के समय में ही इन कठोर जैन आचारों का पालन कठिन था, और आधुनिक भारत में तो ये और भी कठिन है। असल में कठिन मार्ग के कारण ही ये धर्म भारत से बाहर उस तरह से नहीं फैल पाया जैसे कि बौद्ध धर्म। आज दिगंबर साधु कभी कभार चार लेन वाले राजमार्गों पर चलते दिखाई दे जाते हैं। जैन समुदाय आज अपनी व्यवहारिक कुशलता और व्यावसायिक नैतिकता के लिए जाना जाता है, और इन्हीं गुणों के कारण आज वो देश के सबसे धनी अल्पसंख्यक समुदाय में से एक हैं। 21वीं सदी में भारतीय संभ्रांत परिवार की चकाचौंध और दिखावे भरी जीवन शैली की तुलना में जैन अनुयायी इस समृद्धि का प्रदर्शन ना के बराबर करते हैं। जैनियों में परोपकार की सशक्त परंपरा है जिसका केंद्र प्रायः पशु पक्षी होते हैं। इसी परंपरा और परोपकार की भावना के कारण आज दिल्ली पक्षी चिकित्सालय की वित्तीय हालत गरीबों के लिए बने सरकारी अस्पतालों से बेहतर है। शनिवार की सुबह बच्चे पक्षी चिकित्सालय में स्वस्थ हो चुके कबूतरों, गौरैयों, कौओं और चीलों को छत पर लाने में मदद करते हैं, जहां पंछी अपने पंख फड़फड़ाते हैं और फिर से आसमान की ऊंचाइयां नापने लगते हैं।
ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिरसिद्धानम।